वो मेरा बाबा है। आपका है या मेरा है? गीता में भी भागवत में बताया था कि हर एक गोपी के गोप गोपी के साथ श्री कृष्ण रास खेल रहे थे। हर गोप और गोपी ऐसा समझता था कि श्री कृष्ण तो मेरे साथ खेल रहे हैं। ऐसे श्री कृष्ण एक ही थे लेकिन फिर भी हर एक के साथ खेल रहे थे। वो अनुभव होता था सबको कि हमारे साथ खेल रहे हैं। रामायण में बताते हैं कि जब रावण पर जीत प्राप्त करने के बाद श्री राम, श्री लक्ष्मण और श्री सीता जी अयोध्या वापिस आए थे तो सभी अयोध्या निवासी उनसे मिलने के लिए बहुत उत्सुक थे और वो राम से व्यक्तिगत रूप से पर्सनली मिलना चाहते थे। अब एक राम वहां सामने हजारों लोग को कैसे मिले, कितना टाइम चाहिए? तो उन्होंने ऐसी माया रची, मना अनुभव कराया कि हर एक को लगा कि श्री राम से मैं पर्सनली मिला हूं, मैंने पर्सनली उनका वेलकम किया है। तो अभी भी बाबा एक होते हुए हम सबसे व्यक्तिगत रूप से बाबा जैसे बातचीत कर रहे हैं। बाबा का व्यक्तिगत अनुभव सबको होता है ना। बाबा के 10 लाख तो ऐसे बच्चे जिन्होंने बाबा को पहचाना और जिन्होंने बाबा को नहीं पहचाना ऐसे करोड़ों बच्चे जो दूसरे रूप में बाबा को याद करते हैं। तो बाबा हर एक के पास कैसे पहुंचता होगा? भक्ति में लोग कहते हैं, बड़ी अच्छी बात है, आप गहराई से समझना इसको। भक्ति में लोग कहते हैं कि भगवान कण कण में है, सर्वव्यापी है, और अगर उनको कहें कि ब्रह्मा जी में भगवान आया है तो नहीं मानते। एक तरफ वो कह रहे हैं कण कण में सर्वव्यापी है, तो ब्रह्मा जी में भी तो होने चाहिए ना, सर्वव्यापी है। तो जब हम कहते हैं कि ब्रह्मा में भगवान आया तो ऐसे थोड़े को भगवान आ सकता है, उनकी बात कोई वो नहीं मानते। और ज्ञान में हम कहते हैं कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, केवल परमधाम में रहने वाला है। फिर भी हम सब तरफ बाबा ही देखते हैं, सब तरफ बाबा को बिठा रखा है, कहते हैं बाबा मेरे साथ था, बाबा ने मेरे को ये अनुभव कराया, बाबा ऐसा क्या है। हम भी अपनी कही हुई बात को नहीं मानते, वो भी अपनी कही हुई बात को नहीं मानते। हम कहते हैं सर्वव्यापी नहीं है, फिर भी हम सब जगह उसको मानते हैं, उसको याद करते हैं। और वो कहते हैं सर्वव्यापी है, पर वो कहीं नहीं मानते कि वो कहीं भी है। तो भगवान के ये एक भावना की बात है। भगवान को हजार हाथ, हजार भुजाओं वाला कहते हैं। वो हजार भुजाओं वाले भगवान का जब तक हम अनुभव नहीं करते हैं तब तक वो केवल कहने की बात होती है। कोई भी चीज अगर आपको कहें कि गुड़ मीठा है, गुड़ मीठा है, चलो आप डायरी में लिखो गुड़ मीठा है, गुड़ मीठा है, 50 बार आप लिख देंगे गुड़ मीठा है, लेकिन मीठा कहने से कोई मुंह में मीठा थोड़ी आ गया। वो तो जब खाएंगे तो लिखने की भी जरूरत नहीं है, फिर तो अपने आप ही पता चलेगा गुड़ मीठा है। तो ऐसे ही भगवान हजार हाथ वाला है, भगवान हजार हाथ वाला है, भगवान सर्वशक्तिवान है, बाबा सर्वशक्तिवान है, ये हम लिखते हैं सुनते हैं वो अलग बात है, लेकिन उसका प्रैक्टिकल अनुभव करना जीवन में वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि कैसे वो सर्वशक्तिवान है, कैसे वो हजार भुजाओं वाला है, कैसे वो हर समय हमारी मदद के लिए तैयार है, मदद करता है, निराकार होते हुए भी साकार में आकर कैसे मदद करता है। ये चीजें जो है प्रैक्टिकल अनुभव करने से हमारी शक्ति बनती है। तब तक हमें शक्तिशाली अनुभव नहीं होता है, शक्तिशाली हम अनुभव नहीं करते अपने आप को। जब तक केवल ज्ञान को हमने पढ़ा है सुना है तब तक वो शक्ति हमारे में नहीं आती है। जब उसको हमने अनुभव कर लिया तो वो शक्ति हमारी बन जाती है। अगर मैं अपनी स्टोरी कहूं तो राजस्थान के उदयपुर जिले के एक छोटे से गांव, बहुत छोटा सा गांव, 2000 की पॉपुलेशन केवल, इतने छोटे से गांव में हम बड़े हुए। अपना खेत था तो खेती करते थे, गाय भैंस रखते थे तो वो सब काम करते थे, साथ में पढ़ाई करते थे। और गांव में कोई साधु संत आ गया तो उसकी कथा सुनते थे, बस यही जीवन था, खेलना कूदना और मजा करना। तो खेती में ही बड़े हुए और इस प्रकार से कभी ब्रह्मा कुमारी संस्था के मुख्यालय में जाएंगे सेवा करेंगे, कभी मैंगलोर में आके आप सबसे मिलेंगे, ये तो कभी सोचा भी नहीं था उस समय, तो सोचा भी नहीं था। इतना छोटा सा बैकग्राउंड, जो बाबा कहते हैं ना गांव का छोरा, बस वही सिचुएशन थी। अकल भी नहीं थी ज्यादा कि किसी चीज को समझे। फिर 10वीं तक गांव में पढ़ाई किया, फिर 10वीं से आगे गांव में स्कूल भी नहीं है, गांव में बस भी नहीं जाती, 2 किलोमीटर पैदल जाना होता था, मेन रोड से उतर के 2 किलोमीटर पैदल जाना तो गांव में जा सकते। और हमारे ग्रैंडफादर दादाजी, उनके पिताजी, उनको कोई लड़का नहीं था तो ग्रैंडफादर को एडॉप्ट किया था। वो गोद लेते हैं ना, बाबा कहते हैं जैसे बच्चे को गोद लेते हैं, तो ग्रैंडफादर को गोद में लिया था उनके पिताजी ने। फिर ग्रैंडफादर के भी कोई लड़का लड़की नहीं था तो हमारे फादर को उन्होंने गोद लिया। वो तीसरी पीढ़ी पर सबसे पहला, मतलब बड़े बच्चे के रूप में मेरा जन्म हुआ घर में। तो तीसरी पीढ़ी पर जन्म हुआ तो घर में बहुत मोह था सबका कि भाई चलो भगवान ने एक बच्चा दिया है। फिर तो हमारी 2 छोटी बहनें और 1 छोटा भाई भी है, 4 भाई बहन है हम, पर सबसे बड़ा मैं था, तो मेरे से सबसे सबको बहुत ज्यादा मोह था। और गांव में भी बहुत मोह, सभी गांव वाले मुझे उठा, छोटा था तब उठा के ले जाते थे अपने घर, खिलाते पिलाते और शाम को वापस घर छोड़ देते, ऐसा गांव वालों का भी मोह था बहुत। तो ऐसे मोह में पले हुए थे। फिर 10वीं वहां पूरा करने के बाद 11th क्लास और कॉलेज के लिए उदयपुर आए, तो उदयपुर में स्टडी किया, अलग से कमरा किराए पर लेके खुद खाना बनाते थे और पढ़ाई किया, कॉलेज वहां पूरा किया। उस समय कोई खास भक्ति भावना नहीं थी, ठीक है गुरुवार के दिन उस मंदिर में, शनिवार के दिन उस मंदिर में, ऐसे वीक में 2-3 दिन मंदिर फिक्स किए हुए थे तो वो मंदिर में जाके आ जाते थे। जब बीकॉम फाइनल ईयर में थे, 3rd year BCom में, तब मुझे घर से समाचार मिला कि हमारे एंगेजमेंट के लिए, सगाई के लिए कोई घर पे आए हैं, कोई किसी लड़की के पिताजी घर पे आए थे हमारे एंगेजमेंट के लिए। मैं तो उदयपुर था, घर वालों ने उनको वापस भेज दिया कि भाई अभी तो स्टडी कर रहा है, अभी हम सगाई नहीं करेंगे, उन्होंने वापस भेज दिया। जब मैं संडे को घर गया तो उन्होंने बताया कि भाई ऐसे वो लोग आए थे और हमने वापस भेज दिया। खैर हमारा तो स्टडी करना था, लक्ष्य आगे पढ़ने का था, इसलिए उधर बुद्धि नहीं गई। लेकिन इस घटना से मन में एक चीज, मतलब एक जैसे लाइट हुई कि अभी हम बड़े हो गए, मतलब शादी करने लायक हो गए, बड़े हो गए। जो अभी तक तो स्टूडेंट में चल रहा था, स्टूडेंट लाइफ, लेकिन जब वो एंगेजमेंट के लिए आए उसके बाद कि अभी हम बड़े हो गए, जीवन में कोई नया मोड आने वाला है, ऐसा मन में रियलाइज हुआ। जब ये ऐसा रियलाइज हुआ तो फिर सोचा कि ये शादी जो है ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ज्ञान नहीं था उस समय, केवल अपने आप ही चिंतन चलता था कि लोग शादी क्यों करते हैं, चलो खुशियों के लिए शादी करते हैं। तो हम आसपास देखते थे अपने आसपास कि क्या लोग खुश हैं शादी करने के बाद, हमारे खुद के परिवार में, मित्र संबंधी में, सब जगह देखते थे, नजर रहती थी अभी, क्योंकि अभी वो हो गया ना कि भाई अभी एंगेजमेंट के लिए आए हैं, हम बड़े हो गए तो कल उठ के एंगेजमेंट भी करेंगे, तो हमको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो वो एनालिसिस करते थे कि लोग खुश है कि नहीं है। एनालिसिस में यही देखा कि जिस लक्ष्य से शादी करते हैं कि खुश रहेंगे, दूसरे को मदद करेंगे, जरूरी नहीं कि वो लक्ष्य पूरा हो रहा हो सभी का। दोनों बुढ़ापे में एक दूसरे को मदद करेंगे, अभी किसी को तो एक बार पहले जाना पड़ेगा ना दोनों में से, दोनों साथ में जाएंगे ऐसा तो है नहीं। तो फिर जब एक जाएंगे तो दूसरा तो अकेला ही हो गया, फिर तो कैसे साथ साथ रहेंगे। तो ऐसे ऐसे मन में विचार चलते थे और हम सीए करने के लिए अहमदाबाद चले गए। तो अहमदाबाद जिस हॉस्टल में रह के हम सीए करते थे, तो हमारा एक सीनियर था जो भाई सीए कर रहा था, उसके पास बहुत धार्मिक पुस्तकें थी, पूरा बैग भर के, वो गीता प्रेस गोरखपुर में प्रिंट होती है सारे हिंदू धर्म की पुस्तकें, तो वो पुस्तकें थी। तो हमारे फ्री टाइम में वो पुस्तकें पढ़ते थे, अच्छी अच्छी स्टोरी होती थी तो वो पढ़ते थे सब। उसी समय महात्मा गांधी की जीवन कहानी पढ़ने को मिली, सत्य के प्रयोग। आप में से किसी ने पढ़ा है महात्मा गांधी की जीवन कहानी सत्य के प्रयोग? नहीं पढ़ा है, एक बहन जी ने पढ़ा है। बहुत अच्छी पुस्तक है, बहुत ही अच्छी पुस्तक है। तो वो पढ़ा सत्य के प्रयोग। वो पढ़ने के बाद मन में एक तूफान उठा, बहुत भयंकर तूफान। तूफान ये उठा कि महात्मा गांधी जो हर प्रकार से साधारण थे, साधारण परिवार, पढ़ने में भी साधारण, दिखने में भी साधारण, सब कुछ साधारण थे, फिर भी दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत अंग्रेजों के राज्य को उन्होंने भगा दिया। वो भी कोई हथियार नहीं, कोई सेना नहीं, केवल सत्य और अहिंसा, ऐसे दो चार गुणों को लेकर दुनिया की इतनी बड़ी सल्तनत को उन्होंने भगा दिया। तो मेरे मन में चलने लगा कि जब वो साधारण व्यक्ति इतना बड़ा काम कर सकता है तो मैं भी तो कर सकता हूं, मैं क्यों नहीं कर सकता। तो मन में ये निश्चय हो गया कि अभी इस जीवन में मुझे कुछ विशेष काम करना है, साधारण नहीं जीना है। केवल शादी की, बिजनेस किया, बड़े हुए, बच्चे हुए, परिवार बढ़ाया, बिजनेस बढ़ाया और मर गए, ऐसा मुझे नहीं जीना है। आजकल तो ये हालत है कि तीसरी पीढ़ी वाले बच्चे को पूछो कि आपके दादाजी के पिताजी का क्या नाम था तो भी याद नहीं है कि दादाजी के पिताजी का नाम क्या था। इनका ऐसा जीवन नहीं जीना है। हमें जीवन जीना है तो ऐसा जीवन जीना है जिस जीवन पर हमें भी गर्व हो, हमारे परिवार वालों को भी गर्व हो, हमारे मित्र संबंधियों को भी गर्व हो और सारे देश को गर्व हो, ऐसा जीवन हमें जीना है। ये मन में पक्का निश्चय कर लिया, अंदर जैसे कहते हैं ना गांठ बांध दिया कि अभी हमको ऐसा ही जीना है। लेकिन फिर सोचा कि अभी तो कोई अंग्रेजों का राज्य नहीं है कि हम भी गांधी जी की तरह सत्याग्रह करें, आंदोलन करें, ये करें वो करें, तो अभी हम क्या करें, अंग्रेज होते तो हम भी बम फोड़ते, ये करते वो करते, वो तो है नहीं। फिर जो धार्मिक पुस्तकें पढ़ते थे ना साथ साथ में, तो वो पुस्तकों से ऐसा निश्चय हुआ कि अगर कुछ विशेष करना है तो भगवान का एक क्षण का साक्षात्कार कर ले। अगर भगवान का एक सेकंड का भी साक्षात्कार हो जाएगा ना, तो ये बहुत विशेष है, दुनिया में किसी को नहीं होता है, मुश्किल से किसी किसी को साक्षात्कार होता है, बाकी नहीं होता है। तो मैंने कहा ये बहुत बड़ा काम है, ये विशेष काम है, अगर हमने ये कर लिया तो समझो कि हमने जीवन में कुछ विशेष किया है। और धीरे 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 मन में ये बात फिक्स होती गई धीरे धीरे कि बस भगवान का साक्षात्कार ही करना है। और उस समय में सीए पढ़ रहा था। अब वो धार्मिक पुस्तकों में लिखा था कि भगवान का साक्षात्कार करना हो तो गुरु होना चाहिए, गुरु से ही भगवान मिलता है। तो अभी गुरु किसको बनावे, ये और प्रश्न पैदा हुआ मन में। तो फिर दो संतों की कथा सुनने गए, उस समय हम गुजरात में बड़ौदा में रहते थे, अहमदाबाद छोड़ के बड़ौदा आ गए थे। तो वहां दो संतों की कथा सुनने गए, उसमें से एक संत का गीता पर प्रवचन हमको अच्छा लगा, हमने कहा हम इसी को गुरु बनाते हैं। तो उनको गुरु बनाया, गुरु बना के उनकी जितनी पुस्तकें थी, सीडी थी, सब खरीद लिया और उसका पढ़ाई करने लगे, बहुत पढ़ाई किया धार्मिक। फिर अगली जो गुरु पूर्णिमा पर आए तो उनके आश्रम में जाके गुरु दीक्षा भी लिया, खास दीक्षा लिया हमने, गुरु मंत्र लिया और मंत्र का जाप करते थे। मन में एक ही लगन थी, बस कुछ भी हो मुझे भगवान का साक्षात्कार करना है, कितने एक सेकंड के लिए, बस यही इच्छा थी मन में कि भगवान का साक्षात्कार करना है, जो कोई नहीं कर सकता। तो साक्षात्कार के लिए इतनी मेहनत कर रहे। फिर एक बार तो गुरु के आश्रम में 7 दिन मौन मंदिर में बंद रहे, बिल्कुल मौन रखा और तपस्या की कि साक्षात्कार हो जावे, इतनी तपस्या किया। उधर घर वाले बहुत चिंता करने लग गए हमारे कि ये आजकल बहुत धार्मिक होता जा रहा है, बहुत चिंता करने लग गए। क्योंकि घर पे वो एंगेजमेंट के लिए और कोई न कोई आता था तो भी वो परेशान रहने लग गए, मुझे पूछते थे तो मैं यही कहता था कि अभी मेरे तो पढ़ाई करनी है, पढ़ूंगा उसके बाद शादी करूंगा, ऐसा ही कहता था। तो घर वाले बहुत चिंता करने लग गए। और उधर मैं मौन मंदिर में तपस्या कर रहा था भगवान के साक्षात्कार के लिए। उसी समय हमने जो गुरु के वहां प्रवचन सुने, कथाएं सुनी, तो कहा कि अगर भगवान का साक्षात्कार करना हो तो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना बहुत जरूरी है, तो भगवान का साक्षात्कार जल्दी होता है। तो हमने गुरु के आश्रम में प्रतिज्ञा किया कि हम आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेंगे। अब उस समय तो ये समझते थे कि गृहस्थ में रह के तो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन नहीं कर सकते शादी करने के बाद, तो हमने दूसरी प्रतिज्ञा की कि इस जीवन में हम शादी नहीं करेंगे, ये गुरु के आश्रम में प्रतिज्ञा किया। फिर भी वो 7 दिन की मौन तपस्या के बाद भी भगवान का साक्षात्कार नहीं हुआ। तो हमने सोचा कि ऐसे अभी दुनिया में रह के तो भगवान का साक्षात्कार नहीं होगा, या तो गुरु के आश्रम में सन्यासी बनना पड़ेगा या हिमालय में सन्यासी बन के जाना पड़ेगा और तपस्या करना पड़ेगा तो साक्षात्कार होगा। तो हम घर छोड़ के सन्यासी बनने के लिए तैयार हो गए, बस घर छोड़ के जाने वाले थे। और उसी समय किसी भाई ने हमको कहा, क्योंकि मेरे पास में गीता की एक बहुत बड़ी पुस्तक होती थी, साधक संजीवनी नाम है उसका, स्वामी राम सुखदास जी की लिखी हुई, वो मेरे बैग में ही रहती थी। जब भी मुझे 10 मिनट मिलता था मैं वो खोल के गीता का एक अध्याय पढ़ लेता था। तो किसी भाई ने देखा हमारी ऑफिस में, तो उसने कहा आपको गीता बहुत अच्छी लगती है। मैंने कहा हाँ मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो कि आपके घर के पास में गीता पाठशाला है, आप वहां जाओगे ना आपको बहुत मजा आएगा। मैंने कहा ये तो अच्छी बात है, हम अकेले पढ़ते हैं तो गीता पाठशाला में जाके सबके साथ गीता पढ़ेंगे तो और अच्छा मजा आएगा। तो मैंने एड्रेस ले लिया और दूसरे दिन में वो गीता पाठशाला में पहुंचा। सवेरे लगभग 8 बजे का टाइम था, 7:30-8 बजे। तो एक छोटा सा कमरा था, जैसे बाबा का रूम है ऐसा कमरा था, उसमें ये ब्रह्मा बाबा की ट्रांसलाइट लगी हुई थी और एक भाई मुरली पढ़ रहे थे। सामने 5-7 लोग, 10 लोग बैठे हुए थे। मैं भी बैठ गया, जाके ऐसे प्रणाम किया, क्योंकि भक्ति में तो प्रणाम करते हैं ना साक्षात, तो ऐसे प्रणाम किया और बैठ गया। मैंने सोचा इनके गुरुजी हैं, वो सामने फोटो लगा था तो इनके गुरुजी होंगे। मैं ब्रह्मा कुमारी क्या होता है, सेंटर क्या होता है, राजयोग क्या होता है, कुछ भी पता नहीं था मुझे वो। तो मैं उसके एक डॉक्टर था उसके घर पे गया, उसके घर में पाठशाला चलती थी तो वहां गया। उस फिर जब पूरा हुआ उनका मुरली क्लास पूरा हुआ, फिर वो भाई मेरे से मिले, परिचय पूछा, फिर कहा कल से आपका कोर्स करेंगे। तो मैंने कहा कोर्स क्या करना, मुझे तो गीता सब आती है, मैंने तो गीता बहुत बार पढ़ी है। बोले नहीं, फिर भी यहां नया ज्ञान है ना, तो आपको कोर्स करना पड़ेगा 7 दिन का, 1 घंटा रोज आने का। मैंने सोचा इनको विश्वास नहीं हो रहा है, तो मैं गीता के 3-4 श्लोक संस्कृत में बोल दिया मैंने कि उनको विश्वास हो जाए। तो वो बोले नहीं नहीं अच्छा है आपको आती है गीता, लेकिन यहां जो है ना वो नया कोर्स है, नया ज्ञान है, तो आपको 7 दिन का कोर्स करना है। मैंने कहा कितना फीस है आपका? बोले कोई फीस नहीं है, आप केवल आइए। फिर उन्होंने संस्था का परिचय दिया कि कहा ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय है और यहां डिग्री दी जाती है, वो डिग्री है लक्ष्मी नारायण की डिग्री। मैंने ऐसा एक बड़ा फोटो था, इससे थोड़ी छोटी साइज का लक्ष्मी नारायण का फोटो था, उसकी तरफ इशारा करके कहा ये डिग्री यहां पे दी जाती है। वो जो भाई था वो खुद भी मैरिड था, वो और उसकी युगल दोनों रहते थे वो घर में, और डिग्री भी लक्ष्मी नारायण माना युगल की डिग्री थी। तो मैंने सोचा कि यहां जो आता है उसको शादी करना जरूरी है, इस संस्था में शादी करना जरूरी है। तो मैंने वो भाई से पूछा कि ये कोर्स करना है तो यहां शादी करना जरूरी है क्या आपके यहां? वो भाई मेरी ओर देखने लगा, बोले अभी क्या बोले इसको, कुमार है ये तो, अगर इसको कहेंगे शादी नहीं करना है तो भी भाग जाएगा, क्योंकि वो तो मेरे को जानता नहीं था। तो उसने कहा नहीं आपकी जो मर्जी हो करना। मैंने कहा नहीं आप मेरे को पक्का बताओ पहले कि आपके यहां शादी करना जरूरी है क्या, ये कोर्स करते हैं तो। उसने कहा देखो हम तो भगवान का ज्ञान देते हैं, शादी करना या नहीं करना वो आपकी इच्छा पर है, आप ज्ञान सुनिए फिर जो आपको ठीक लगे वो आप करना। हमने कहा ठीक है चलो कोर्स तो करते हैं। उस समय भी मैं 4 बजे उठता था, 4 बजे उठ के गुरु की जो गुरु मंत्र की माला वो 21 माला जपता था, बहुत मेहनत करता था, बहुत भक्ति करता था। तो मैंने कहा चलो कोर्स करते हैं। तो दूसरे दिन से कोर्स चालू हुआ मेरा। अब आत्मा का परिचय दिया, परमात्मा का परिचय दिया। अब मैंने तो बहुत शास्त्र पढ़े थे, गुरु के आश्रम में भी बहुत पढ़े थे, घर पर भी बहुत शास्त्र लाया था मैं। अब वो शास्त्रों में कुछ और लिखा हुआ है और ये कुछ और बताते हैं। इनका चलो करते तो हैं। दूसरे दिन परमात्मा का लेसन। अब शास्त्रों में कुछ और लिखा हुआ है, ये कुछ और बतावे, लेकिन इनकी बात सच्ची लगे कि हां 2+2=4 हो रहा है, ये जो बात कर रहे हैं वो शास्त्रों में बताई हुई बात से अलग है, लेकिन 2+2=4 तो हो रहा है इनकी बात में। कहो चलो करते हैं, क्या होता है देखते हैं। दो तीन दिन में तो दिमाग इतना घूमने लग गया कि मैंने इतना पढ़ा हुआ है वो कहां है, ये तो कुछ वो अलग ही है पूरा, लेकिन क्या सच्चाई है क्या है पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन कहा चलो कोर्स करते हैं। पांचवें दिन जब सीढ़ी का लेसन किया, सीढ़ी का लेसन करते ही पूरा ज्ञान क्लियर हो गया माइंड में कि हां ये ही सच्चा ज्ञान है। फिर कोई भी क्वेश्चन नहीं उठा, बस यही ज्ञान मेरे लिए है। फिर 7 दिन के बाद तो मुझे जैसे बाबा का ऐसे कोई साक्षात्कार नहीं हुआ, लेकिन जो ज्ञान मिला वही साक्षात ज्ञान था, साक्षात बाबा ही सामने था ज्ञान के बाद, तो साक्षात्कार की इच्छा पूरी हो गई। जिसका एक क्षण के साक्षात्कार के लिए मैं दुनिया छोड़ने वाला था, वो बिना दुनिया छोड़े साक्षात मुझे मिल गया है, जब चाहे मैं उसके साथ बात करूं, अधिकार रूप में मुझे मिल गया है, बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। और उसके बाद रेगुलर क्लास में जाना शुरू कर दिया। इधर परिवार वालों का प्रेशर बढ़ता गया शादी के लिए, शादी करो शादी करो, बहुत प्रेशर बढ़ता जा रहा था। और मुझे बस बाबा की लगन बढ़ती जा रही थी। मैंने एक बहाना बनाया शादी नहीं करने के लिए, यहां कुमार्स भी बहुत आते हैं ना, इसलिए खास मैं उनके लिए भी बताता हूं और मैं कैसे फंस गया वो भी बताता हूं। तो मैंने बहाना बनाया घर पे कि भाई मैं तो देखो अभी ब्रह्मा कुमारी में जाता हूं, पहले तो ये बहाना था कि पढ़ाई कर रहा हूं, वो भी जब मेरा सीए आधा पूरा हुआ और मेरी नौकरी लग गई थी तो मैं जॉब करने लग गया था, तो अब घर वाले ज्यादा प्रेशर करने लग गए भाई अब तो जॉब कर रहा है अब सगाई कर ले, शादी भले सीए पूरा होने के बाद करना लेकिन सगाई तो अभी कर दे। फिर मैंने बहाना बनाया कि मैं देखो पवित्र जीवन जीऊंगा, तो अगर ऐसी कोई लड़की मिलेगी जो पवित्र जीवन जीने वाली होगी तो मैं शादी करूंगा, ये बहाना मैंने घर वालों को दे दी। अब राजस्थान में मैं जिस जाति से आता हूं माहेश्वरी से, वो बहुत रूढ़ी चुस्त है, मतलब पुराने विचारों वाले। घर में कोई साधु बनेगा तो मंजूर नहीं है, घर में कोई साधु नहीं बनेगा। पड़ोसी में कोई साधु बनेगा तो एक भोजन हम अपनी ओर से भी दे देंगे, लेकिन पड़ोसी के घर में साधु बनना चाहिए, अपने घर में साधु नहीं बनने का कोई, ऐसी विचारधारा वाले। तो मैंने कहा कि हमारे समाज में तो ऐसी लड़की कोई मिलेगी ही नहीं कि जो पवित्र रहना चाहती हो, इसलिए शादी से छूट जाएंगे, ऐसा सोच के मैंने ये बहाना दे दिया। फिर जो भी सगाई के लिए आते थे तो उनसे यही बात करते थे, भाई पवित्र जीवन जी रहे हैं, तो वो चले जाते थे ऐसे ही। तो एक बार एक भाई आया तो आके सब मेरे को पूछने लगा ऐसा ऐसा, तो मैंने समझ गया कि ये वो एंगेजमेंट के लिए आया है, इसकी लड़की के लिए आया है। तो मैंने कह दिया भाई हम तो पवित्र जीवन जीते हैं, ब्रह्मा कुमारी में जाते हैं, ऐसा ऐसा सब। तो उसके बाद वो फिर वापस दूसरी बार आया, जब हमारे घर में कोई फंक्शन था सभी गेस्ट इकट्ठे हुए थे तब भी आया, तब भी आके फिर कहा कि इनको लड़की देखने के लिए भेजिए। मैंने कहा कमाल है, ये तो मुश्किल हो गई मेरे लिए, तो मैंने तो बहाना किया था और ये तो एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। तो हमारे पिताजी ने सबने बताया उनको, तो उन्होंने कहा हाँ भेजिए आप लड़की देखने के लिए। तो मैं तो फंस गया क्योंकि कभी संकल्प भी नहीं था शादी करने का, तो और इधर बात आगे बढ़ने लग गई। तो हमने अब मैं मेरे ही शब्दों में फंसा हुआ था क्योंकि मैंने ही कहा था कि ऐसी लड़की मिलेगी तो शादी कर लेंगे, और वो सामने से लड़की के पिताजी कह रहे थे कि हाँ आप आइए देखने के लिए। खैर स्टोरी बहुत लंबी है लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा उसमें फंसता गया अपनी बात में। बात यहां तक हो गई कि वो लड़की ने बोला हाँ हम ऐसा जीवन जीने को तैयार है, अभी हम क्या करें। अब तो एक ही बात, बाबा को इतना याद करे, इतना याद करे कि हे भगवान भक्ति में तेरे लिए गाते थे कि द्रौपदी की लाज बचाई थी तूने, 21 साड़ियां दी थी, अभी मेरे वो तो बचाए कि नहीं बचाई तू जाने, लेकिन अभी मेरी लाज बचा ले तू, कैसे भी मेरे को इस परीक्षा में से पास कर दो। मेरा दिल से कभी संकल्प नहीं था कि शादी करूं, पर ये कहां फंस गया मैं अभी, जो सामने वाले तैयार है और अभी मुझे मना करना है, मैं क्या कैसे मना करूं अभी। मैं लास्ट जब डेट फाइनल होने वाली थी एंगेजमेंट की, सब घर पे मीटिंग हुई, मैंने बाबा को बहुत याद किया, बहुत याद किया, इतना याद किया कि बात नहीं पूछो कि बाबा कैसे भी आइंदा भूल से भी मैं ऐसी कभी बहाना नहीं बनाऊंगा, कभी कोई बहाना नहीं बनाऊंगा, अभी मेरे को माफ कर, कैसे भी करके मेरे को माफ कर, लेकिन इस परीक्षा में से मेरे को बाहर निकाल। तो लास्ट में जब फाइनल डेट होने के लिए जो मीटिंग हुई थी, तो हमारे पिताजी ने फाइनली पूछा मेरे फ्रेंड को जो मेरे साथ रहता था कि भाई आखिर इसको अभी क्या करना है। तो उस मेरे फ्रेंड ने कहा कि देखो इसने तो कहा हुआ है कि ऐसी लड़की मिलेगी तो शादी करेंगे, लड़की भी हां कह रही है, अब आपको डिसीजन लेना है क्या करना है। तो पिताजी को अचानक क्या हुआ, मैं तो बाबा की याद में ही था, उसके पहले भी एक बात हुई थी आपके यहां पता नहीं, लेकिन हमारे यहां ऐसा होता है कि कोई शरीर छोड़ता है ना तो अपने किसी परिवार वाले के शरीर में वापिस आता है, वो आत्मा पूर्वज आते हैं और वो आके कुछ कुछ बताते हैं और कुछ ऐसी समस्याएं तो सोल्व करते हैं, ऐसा हमारे उधर होता है, उसको बुलाते हैं वापिस, जिन्होंने जो शरीर छोड़ के चले गए उनको वापिस बुलाते हैं। तो ऐसे ही हमारे वो एक कोई थे रिलेटिव जो शरीर छोड़ के गए थे, उनको वापिस एक वो उनके बहू के शरीर में आते थे तो उनको बुलाया, उनको कहा कि भाई ये हमारा ललित शादी नहीं कर रहा है। तो उन्होंने कहा कि देखो ये जहां पर भी जाता है ना वो बहुत अच्छा स्थान है, वो भगवान का काम है, आप इसको रोकना नहीं। वो जो आत्मा आई थी उसने बोला कि घर वालों को कि आप इसको रोकना नहीं, ये बहुत अच्छे स्थान पे जाता है, भगवान का काम है वहां। तो उन्होंने कहा लेकिन ये तो शादी नहीं कर रहा है तो आप इसकी शादी करने के लिए कुछ कीजिए, घर में बड़ा लड़का यही है, ये शादी नहीं करेगा तो दूसरे की क्या होगा ये वो सब। तो उन्होंने कहा, उन्होंने मुझे गेहूं के 5 दाने दिए और कहा कि 6 महीना तक ये दाने अपने पास रखना, पर्स में रखना, अगर इसमें से एक भी दाना खो दिया तो मैं तुझे बीमार कर दूंगा, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। और फिर घर वालों को कहा कि मैं कोशिश करूंगा कि 6 महीने में मैं इसका दिमाग बदलूं, शादी के लिए तैयार करूं, मैं कोशिश करूंगा। वो आत्मा ऐसी बोल के गई थी, वो बहुत पावरफुल आत्मा थी, बहुत सो का उसने काम कर देता था। मैंने उसी जब वो आत्मा को उन्होंने याद किया तो मैंने बाबा को याद किया कि बाबा ये आत्मा है, तू परमात्मा है, तू भी आ जा, तू अपना जलवा दिखा दे, जो भी होगा सो देखा जाएगा। तो मैं बाबा को याद कर रहा था, वो आत्मा ऐसा बोला। फिर वो जब उसने वो दाना दिया ना, उसके दूसरे तीसरे दिन ही ये घटना हुई जो देखने जाना पड़ा और बात आगे बढ़ी और वो सब हुआ। इसलिए भी मैं बाबा को बहुत याद कर रहा था कि बाबा अब तू ही बचाने वाला है, तू ही बचा ले। तो लास्ट में जब मेरे दोस्त ने ये कहा कि भाई ये तैयार है, लड़की भी तैयार है और ये तो अपने शब्द बोला हुआ इसलिए ये तैयार है कि नहीं है, लेकिन अपने शब्दों में ये बंधा हुआ है। तो पिताजी ने कहा कि अगर इसको ऐसा जीवन ही जीना है तो ये अकेला ही बहुत है ना, घर में दो को लाके क्या करेंगे। पिताजी के मुंह से ही पिताजी ने बोल दिया। तो हमने बाबा को इतना थैंक्स किया, आप ताली बजा सकते हैं इस पर। हमने बाबा को इतना थैंक्स किया कि बाबा तूने सचमुच द्रौपदी की लाज बताई थी, ये प्रूफ है इसका कि तूने हमें बचा लिया। उसके बाद कसम खाई कि आज के बाद कोई बहाना नहीं करूंगा, जो बात है स्ट्रेट फॉरवर्ड करने का, कभी बहाना नहीं करने का। उसके बाद खैर वो फाइल पूरी हो गई। उसके बाद कभी शादी के नाम से कोई पेपर नहीं आया, वो बात वहीं पे पूरी हो गई। फिर हमारी से छोटी जो सिस्टर थी उसकी शादी पिताजी ने करवा दी थी। वो कोई ज्ञान में नहीं थे, घर में इतना विरोध, बात नहीं पूछो, बहुत विरोध हुआ हमारा, 7 साल तक विरोध हुआ। मैं जब भी अहमदाबाद से घर जाता था, मैंने बताया 2 किलोमीटर चल के जाना पड़ता था, तो वो 2 किलोमीटर में जो लोग मुझे मिलते सब यही कहते, अरे ललित तूने ये क्या किया, गृहस्थ में रह के भी तो कर सकते हैं, ये क्या किया, माँ बाप की इच्छा माननी चाहिए, ये करना सब मेरे को, मेरा टीचर बन के सब मेरे को पढ़ाते रास्ते में। और घर पे तो रोज सभा लगती थी जब मैं घर गांव जाता था, तो और सब मेरे को समझाने आ जाते थे, किसी भी जाति का व्यक्ति हो मेरे को समझाने आ जाता, क्योंकि मेरा सबसे बहुत स्नेह था, सबसे स्नेह था। मम्मी पापा का रोना, मेरी दादी थी उसका रोना, सब रोते थे और सब इतना विरोध करते थे। एक बार तो घर पे पिताजी ने कहा फाइनली, अब बता फाइनल तेरे को क्या करना है। मैंने कहा आपकी सेवा करनी है और पवित्र जीवन जीना है। पिताजी को इतना गुस्सा आया, पिताजी बोले आज के बाद इस गांव में तूने पैर रखा तो पैर काट दूंगा, इस गांव में पैर नहीं रखने का आज के बाद, इतना गुस्सा आया। तो ऐसे ऐसे घर पे बहुत विरोध होता था। खैर एक बार हमारी जाति के एक बहुत बड़े संत है, उसको राम स्नेही संप्रदाय कहा जाता है, राम दयाल जी महाराज बोलते हैं, तो उनका सत्संग चल रहा था। तो पिताजी और मैं गांव गया था, तो पिताजी और माताजी मेरे को लेके उनके पास ले गए कि गुरुजी के पास ले जाएंगे, गुरुजी कुछ कहेंगे ना तो ये मान जाएगा। तो उनके पास ले गए मेरे को, तो हम उनके रूम में गए, तो वो उस समय वो अनार खा रहे थे, अनार दाना खा रहे थे हाथ में से। तो उन सब ने साष्टांग प्रणाम किया, मैंने भी हाथ जोड़े, ऐसे हम बैठ गए नीचे। पहले उन्होंने बताया नहीं कि वो कहां ले जा रहे हैं, पर मैं समझ गया कि हाँ ये अभी वहां मुझे ले जा रहे हैं। फिर उन्होंने कहा, पिताजी ने कहा कि ये हमारा लड़का है, शादी नहीं कर रहा है, आप इसको कुछ समझाइए। तो उसने मुझे पूछा गुरुजी ने कि क्या नाम है, तो मैंने कहा शरीर का नाम ललित है। जैसे ही मैंने बोला शरीर का नाम ललित है, उन्होंने वो कटोरी जो थी ना हाथ में नीचे रख दी, क्योंकि आज दिन तक ऐसा जवाब किसी ने नहीं दिया उनको। तुरंत एकदम अलर्ट हो गए मेरे सामने, कहा अच्छा तो आत्मा का क्या नाम है। मैंने कहा गुणवाचक कुछ भी कह दीजिए, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, क्या करते हो। उनका राजयोग का अभ्यास करता हूं। अच्छा राजयोग, राजयोग तो बहुत अच्छा है, आप तो कितनी अच्छी तपस्या करते हो। मैं भी एक बार आबू रोड में मेरा सप्ताह जी का कार्यक्रम था, दादी जी मेरे को आके मिले थे, आप लोगों का जीवन तो बहुत अच्छा है, वो मेरी महिमा करने लग गए बहुत गुरु जी। पिताजी देखा ये उल्टी गंगा बह रही है कि मैं तो लाया था कि इसको मनाए और गुरु तो इसकी महिमा कर रहे। फिर पिताजी बीच में बोले कि भाई कि गुरुजी ये शादी नहीं कर रहा है, आप इसको कुछ कहिए ना शादी करने के लिए। फिर गुरुजी ने पिताजी को कहा कि अच्छा ये बताइए कि कि इसमें कितने गुण है। तो पिताजी ने कहा गुण तो बहुत है इसमें, क्योंकि कोई अवगुण था ही नहीं, सब गुण ही थे, तो कि गुण तो बहुत है। कि अच्छा क्या क्या अवगुण है, तो कि कोई अवगुण नहीं है। कि इसके दोस्तों से ज्यादा इसमें गुण है कि नहीं है, तो कि हाँ इसके सभी दोस्तों से ज्यादा इसमें गुण है। तो उन्होंने फिर पिताजी को कहा कि आप बहुत भाग्यशाली हो जो ऐसा योगी लड़का योगी होते हुए अभी तक घर में रह के आपकी सेवा कर रहा है, नहीं तो योगी तो उड़ते पंछी होते हैं, ये कब का उड़ जाता तो आप क्या करते, ये घर छोड़ के चला जाता तो आप क्या करते, कुछ नहीं कर सकते आप। ये तो योगी होते हुए आपकी घर में रह के सेवा कर रहा है, इससे ऊंचा आपका भाग्य और क्या हो सकता है। कि देखो मैं भी घर छोड़ के आया ना, वो साधु बोले, वो गुरुजी बोले मैं भी घर छोड़ के भाग के आया, फिर भी आप लोग मेरी पूजा करते हो ना, तो ये तो आपके घर में रह के आपकी सेवा कर रहा है, आप बहुत भाग्यशाली हो। ऐसा करके उन्होंने और पिताजी को पूरा समझाया। और जब कोर्स भी हुआ ना, मेरा 7 दिन का कोर्स पूरा हुआ, 8वें दिन मुझे वो भाई साहब जिन्होंने कोर्स कराया था, डॉक्टर थे, उन्होंने सामने मुझे बुलाया, कहा अपना परिचय दीजिए क्लास में। तो 8वें दिन ही मैंने परिचय में यही कहा, शरीर का नाम ललित है, ये पढ़ाई कर रहा हूं, ये सब। उन्होंने कहा अभी लक्ष्य क्या है आपके जीवन का, तो मैंने कहा मेरे जीवन का लक्ष्य है श्री कृष्ण के साथ फर्स्ट जन्म में उनके साथ खेलना, ये मेरा लक्ष्य है। मतलब 8वें ही दिन मुझे ये पक्का निश्चय था कि मुझे क्या बनना है, जो मैंने कल शाम को आपको बताया वो निश्चय, और उसी निश्चय से फिर आगे बढ़ते गए। तो जब वो दूसरी वाली बहन की शादी के लिए पिताजी ट्राई कर रहे थे तो कहीं सेट नहीं हो रहा था, तो उन्होंने मेरे पर गुस्सा निकाला, पिताजी को गुस्सा बहुत आता था, उन्होंने मेरे पर गुस्सा, तू ब्रह्मा कुमारी में जाता है ना इसलिए तेरी बहन से कोई शादी नहीं करता है, अभी इसके लिए लड़का ढूंढना और उसके शादी का सारा खर्चा करना ये तेरी जवाबदारी है, मैं कुछ नहीं करूंगा, पिताजी ने बोल दिया। मैंने सुन लिया, ठीक है। मैं बाबा के कमरे में गया और बाबा को बता दिया कि बाबा ये एक नया काम आया हुआ है, आप देख लेना। मेरे को कोई भी कुछ भी काम बोलता है तो मैं जाके बाबा को बोल देता हूं, बाबा के कमरे में, कि बाबा ये काम आया हुआ है आप देख लेना, फिर मैं निश्चिंत हो जाता हूं, फिर बाबा देख लेता है सादा आगे का सारा काम। तो मैंने बोल दिया बाबा को। उस समय मैं एक कंपनी में नौकरी करता था अहमदाबाद में, बहुत अच्छी बात आप सुनना, नौकरी करता था, तो मुझे मधुबन से पहली बार ऑडिट की सेवा के लिए इनविटेशन मिला कि आप 15 दिन के लिए सेवा में आइए ऑडिट की सेवा के लिए। तो मेरे बहन जी ने कहा कि आप जाएंगे, मैंने कहा आप भेजेंगे तो हम जरूर जाएंगे, क्योंकि बहुत खुशी होती थी मधुबन में सेवा करने का चांस मिल रहा है। हमने अपने बॉस जो था ऑफिस में जनरल मैनेजर, उसको एप्लीकेशन दिया कि मुझे 15 दिन की छुट्टी चाहिए, बॉस ने मना कर दिया कि हम 15 दिन की छुट्टी नहीं दे सकते, कि 2-3 दिन की छुट्टी चाहिए तो हम दे देंगे, 15 दिन की हम नहीं दे सकते, और वो भी ऐसे काम के लिए, सेवा के लिए, सॉरी। बहुत समझाया मैंने उसको, ये मेरे लिए बहुत जरूरी है, ये मेरे जीवन का बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, मुझे जाने दीजिए, वो नहीं माना, मैंने रेजिग्नेशन लेटर लिख के दे दिया, ये रही आपकी नौकरी, मुझे नहीं करनी है नौकरी, मुझे छुट्टी दीजिए। उन्होंने कहा ललित पागल हो गए हो क्या, इतनी अच्छी नौकरी कहां मिलेगी तेरे को, या कहीं ना कहीं नौकरी लग गई है तू बता नहीं रहा है, लेकिन कहीं दूसरी जगह तेरे बात कर ली होगी। मैंने कहा कहीं बात नहीं की है, कहीं नौकरी नहीं लगी है, और नौकरी की आप चिंता नहीं करो, वो मेरी लग जाएगी, अब तो मुझे यहां से फ्री करो। उसने कहा कि ऐसा है तो ये रेजिग्नेशन लेटर मैं अपने पास रख लेता हूं, पहले तू नौकरी ढूंढ ले, तो नौकरी लग जाए ना फिर मैं ये रेजिग्नेशन लेटर लूंगा, नहीं तो तुझे जो है बार्गेनिंग का पावर नहीं रहेगा तो नौकरी अच्छी नहीं मिलेगी। मैंने कहा अच्छी नौकरी मिल जाएगी, आप चिंता छोड़िए, आप तो आज ही रेजिग्नेशन लेटर एक्सेप्ट कीजिए। तो मेरा रेजिग्नेशन लेटर एक्सेप्ट हो गया, मैं मधुबन चला गया। ये 98 की बात है। वहां पे 15-20 दिन सेवा किया, फिर वापिस आया, अब मैं फ्री था। मेरे पास कोई बैंक बैलेंस नहीं था, 100 रुपया भी बैंक बैलेंस नहीं रहता था मेरा। बहन की शादी करानी थी तो पैसे चाहिए थे, पैसा इकट्ठा करना था, उसकी जगह नौकरी भी चली गई, खुद का खर्चे के लिए भी कुछ भी नहीं था मेरे पास। तो बहन की शादी तो अलग बात थी, फिर भी मैंने बाबा को कभी नहीं बोला, वापस जाके रिमाइंड नहीं कराया, बाबा वो बहन की शादी करानी है, कभी रिमाइंड नहीं कराया। क्योंकि मनुष्य को कोई काम के लिए रिमाइंड कराया जाता है, भगवान को रिमाइंड नहीं कराया जाता है। भगवान को तो एक बार बोल दिया, बोलने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन चलो एक बार बोल दिया तो बहुत है, फिर वो अपने आप करेगा। तो मैंने कुछ नहीं बोला बाबा को, मैंने बेंजी को बताया, बेंजी तीन ऑप्शन है मेरे पास, या तो मैं फिर कोई दूसरी नौकरी ज्वाइन करूं, या फॉरेन में, उस समय एक दो जगह बात चल रही थी कि फॉरेन जाने के लिए, या अपना खुद का ऑफिस चालू करूं। तो बेंजी ने कहा कि आप अपना खुद का ऑफिस चालू कीजिए। यहां मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपको निर्विघ्न रहना है, सफलता प्राप्त करनी है, तो बाबा ने जिस बहन को निमित्त बनाया हुआ है उसको बाबा के स्थान पर रखकर देखने का। मैं तो जो भी बहन कहती थी, हमारी इंचार्ज बहन जो कहती थी, आंख बंद करके उसको पालन करता था, आंख बंद करके, क्योंकि बाबा ने उसको बिठाया है, बाबा जवाबदार है। अगर यहां तेल का डिब्बा रखा हुआ है और बेंजी कहती कि इस डिब्बे को यहां पे गिरा दो, मैं ये नहीं कहता था बेंजी यहां तेल हो जाएगा, सारे कपड़े खराब हो जाएंगे, सफाई करनी पड़ेगी। ठीक है, बेंजी ने बोला ना गिरा दो, बस अपना यही काम है, जो बेंजी ने बोला वो करने। हर चीज बेंजी को पूछ के करता था, हर चीज, जो सेंटर इंचार्ज बहन थी, हर चीज उनको पूछ के करता था। और इसी में मेरी सेफ्टी भी थी, इसी में मेरा डेवलपमेंट भी था, इसी में जो विश्वास था वही मुझे आगे बढ़ाता था। तो मैंने बेंजी को पूछा, बेंजी क्या करूं, ये तीन ऑप्शन है मेरे पास। तो बेंजी ने कहा अपना खुद का ऑफिस चालू कीजिए। अब खुद का ऑफिस चालू करने के लिए कोई ऑफिस होना चाहिए, फर्नीचर होना चाहिए, उसमें क्लाइंट होना चाहिए, टेलीफोन होना चाहिए, कंप्यूटर होना चाहिए, माना 25-50 हजार रुपया हो तो कहीं ऑफिस चालू कर सके। और हर साल जो हर महीने रेंट देने का, वो सब चीजें तो है ही है खर्च। बेंजी ने कहा, मैंने मंजूर कर लिया। तो मैं जिस कमरे में किराए पे रहता था उसी कमरे के एड्रेस पर विजिटिंग कार्ड छपा के अपने फ्रेंड्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कि भाई मैंने प्रैक्टिस चालू किया है, आपको कोई भी काम हो तो बताना। अब लोग भक्ति में कहते हैं कि भगवान हजार हाथ वाला है, लेकिन पता नहीं उनको कभी अनुभव होता होगा कि नहीं होगा। लेकिन मेरा अनुभव मैं आपको बताऊं कि जब सीए का ऑफिस चालू किया, वो अपने कमरे में से जिसमें मैं रहता था, 20 दिन के अंदर, केवल 20 दिन शुरुआत के, मुझे इतना काम मिला जो मेरे पूरे साल की सैलरी के बराबर होता था। केवल 20 दिन में इतना काम मिला जो पूरे साल की सैलरी के बराबर होता था। आप बताइए, अब बाबा को थैंक्स करे कि नहीं करे, वो हजार हाथ वाला है कि नहीं है। फिर 10 दिन बाद अहमदाबाद का एक सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट सामने से मेरे पास आया, मेरे पहचान वाला था, और मेरे को आके बोले, ललित भाई आपने प्रैक्टिस चालू किया है? मैंने कहा हाँ। बोले आप मेरी ऑफिस आना आज 11 बजे। मैंने कहा ठीक है। मैं 11 बजे उसकी ऑफिस गया। उसने कहा देखो ललित भाई, मेरा इतना साल का पुराना प्रैक्टिस है, बहुत काम है, लेकिन मेरे पास कोई सीए नहीं है। अगर आप एज ए पार्टनर, चार्टर अकाउंटेंट एज ए पार्टनर मुझे ज्वाइन करते हैं तो मैं आपको इतना परसेंट दूंगा। तो मैंने कहा भाई साहब, मेरे पास आपको ज्वाइन करने के लिए कोई कैपिटल नहीं है कि मैं आपको दे सकूं 1 लाख 2 लाख 5 लाख, मैं आपको कुछ भी नहीं दे सकता हूं, और मेरा कुछ फाइल्स भी नहीं है, अभी तो केवल शुरुआत हुई है मेरी। उन्होंने कहा ललित भाई आप चिंता नहीं करो, मेरी इतनी प्रैक्टिस है, जो आप तो केवल ये टेबल कुर्सी आके बैठिए और इसी महीने से मैं आपको इतना परसेंट जो है वो देना शुरू कर दूंगा। मैंने कहा ठीक है, मैं बेंजी को पूछ के बताऊंगा। मैंने बेंजी को पूछा, बेंजी ने कहा ठीक है ज्वाइन कर लो। मैंने ज्वाइन कर लिया। जिस महीने में मैंने उनकी ऑफिस ज्वाइन की, उस महीने से एक नया इनकम शुरू हुआ वहां पे, उसी महीने से एक नया इनकम शुरू हुआ। और उस नए इनकम में मेरा जो शेयर था वो भी बहुत अच्छी रकम हर महीने मुझे मिलने लग गई। तो 7-8 महीने में ही मेरी बहन की शादी के लिए जितना पैसा चाहिए ना, वो सब इकट्ठा हो गया। देखो नौकरी छोड़ने के बाद कुछ भी नहीं था, 7-8 महीने में उतना पैसा इकट्ठा हो गया जो बहन की शादी हो जावे। और फिर एक बहुत अच्छा लड़का, अच्छे परिवार का लड़का भी मिल गया, तो उसकी एंगेजमेंट भी कर दी और शादी भी हो गई। और बहुत घर वालों को, गांव वालों को, सबको आश्चर्य हुआ कि ये कैसे हो सकता है, ना तो इसके पास पैसा था, ना इसके पास कुछ था, फिर ये कहां से लाया ये सब, उनको आश्चर्य होता था। तब मैंने उनको समझाया कि भगवान कैसे 1000 हाथ वाला है और कैसे भगवान की मदद मिलती है। आप लोग तो केवल मंदिर में जाके आरती बोल के आ जाते हो, लेकिन यहां तो प्रैक्टिकल उसकी मदद से जीते हैं हम रोज। एक और छोटा सा बहुत अच्छा उदाहरण था, मैं जिस कमरे में किराए पर रहता था ना, जिसमें बताया मैंने ऑफिस चालू किया, वो एक बीके भाई का था। तो बीके भाई ने, नीचे वो रहता था, ऊपर उसका सिस्टर का मकान था, वो मेरे को किराए दे रखा था। तो उसने 15 दिन पहले मेरे को बताया कि 15 दिन बाद वो उसकी बहन के बच्चे कॉलेज में पढ़ने के लिए आने वाले हैं, तो आपको ये मकान खाली करना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है। मैंने बाबा के कमरे में जाके बाबा को बोला, बाबा मकान खाली करना है, कहीं भी देख लेना आप। मैं निश्चिंत हो गया, मैं कमरा मकान देखने नहीं जाऊंगा, बाबा देखेगा, बाबा को जो भी करना है। वो बेचारा जो मकान मालिक था, उसने 2-3 मकान बताए लेकिन पसंद नहीं आए, मैं कहीं देखने नहीं गया। लास्ट दिन, जिस दिन खाली करना था उसके एक दिन पहले, मैं मुरली क्लास करके उतर रहा था, वहां सीढ़ियां है ऊपर, फर्स्ट फ्लोर पर क्लासरूम है, तो नीचे उतर रहा था। तो बेंजी ने कहा कि ललित भाई मैंने सुना है आपको मकान चेंज करना है। तो मैंने कहा जी बेंजी, चेंज तो करना है। बोले कब करना है? मैंने कहा आज ही करना है। बोले कहीं देखा है मकान आपने? मैंने कहा मैंने तो नहीं देखा। वो हंसने लगे कि आज मकान खाली करना है, मकान कहीं देखा भी नहीं है और कोई चिंता भी नहीं है कि आज मकान खाली करना है। फिर वो अंदर गए, अंदर से एक किचन लेके आए जिसमें 8-10 चाबियां थी, लाके मुझे दिया, कहा कि ये वो मकान है, 8-10 कमरे हैं उसमें, पूरा ही मकान खाली पड़ा हुआ है, ये चाबियां आप इसको संभालिए। मुझे चाहिए था एक कमरा, और बाबा ने कितना दिया वो भी मांगे बगैर, केवल एक बार बता दिया उसको। हमारे सामने कोई भी समस्या आती है ना, तो हम उसके कितना उत्तर ढूंढते हैं, या तो ऐसा कर लेवे, या ऐसा कर लेवे, या ऐसा कर लेवे, ऐसे ए बी सी डी करके हम चार उत्तर ढूंढते हैं उसका, ढूंढते हैं ना चार उत्तर, ऐसा करे वैसा करे वैसा करे या नहीं तो ऐसा कर लेवे, और उसी में हमारी बुद्धि को हम लगाते हैं। लेकिन जब हम बाबा को सौंप देते हैं कोई भी बात समस्या, तो बाबा उसका पांचवा उत्तर लेके आता है ई, जो हमने सोचा भी नहीं था, और बहुत सरल एकदम बी फिटिंग ऐसा वो उत्तर लेके आता है। तब आश्चर्य होता है कि बाबा भगवान सचमुच हजार हाथ वाला है। तो ऐसे तो बाबा ने अनेक अनुभव इस जीवन में कराए, एक नहीं अनेक अनुभव कराए। 2007 में मेरे घर से इतना विरोध था, फिर भी मैं मधुबन में समर्पित हो गया और 2007 से मधुबन में ही सेवा कर रहा हूं। सेंटर पर अहमदाबाद में भी सेंटर पर ही रहता था, लेकिन 2007 से तो फुल टाइम मधुबन में ही रहता हूं। फिर जब घर वाले मधुबन में भी आए, देखा किया, तो वो फिर बहुत खुश हो गए। अभी तो घर पे गीता पाठशाला चलती है गांव में, वो साइकिल यात्रा के बाद है। लेकिन कहने का भाव है कि अगर हमको बाबा में निश्चय है, स्वयं सर्वशक्तिमान भगवान जिसने इस दुनिया की रचना की है, जो इस दुनिया को चला रहा है, वो भगवान स्वयं हमारे साथ है, हम उसके साथ बात करते हैं, उसमें अगर निश्चय है तो कोई काम मुश्किल नहीं है। हर काम हुआ ही पड़ा है, बाबा कहते हैं ना हुआ ही पड़ा है, ऐसे हर काम हुआ ही पड़ा है। केवल हमें बाबा में निश्चय की जरूरत है। प्रयोग करके देखिए, मैं भाषण नहीं कर रहा हूं, क्लास नहीं करा रहा हूं, लेकिन अपना अनुभव सुना रहा हूं। आप भी प्रयोग करके देखिए, कभी भी कोई भी प्रयोग करके देखिए, छोटा मोटा प्रयोग करके देखिए कैसे आपको अनुभव होता है। मेरे पास तो ऐसे बहुत से उदाहरण है, मैंने बताया ना कि अगर सुनाने बैठूं तो भागवत का एक अध्याय पूरा मेरे नाम का है, इतने बाबा ने अनुभव कराए। लेकिन टाइम हो गया है तो अभी यही इसको पूरा करेंगे। ओम शांति।
शांति। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी को, अपने अनुभव से हम सभी को इतना फ्रेश बनाया। तो अभी सभी जूस पियेंगे, एल्ला जूस कुड़ो, मत्ते 12 के बंद कुत्कोळ्बेकु। भाई जी मत्ते इवत्तिन टॉपिक परमात्म शक्ति इंद महापरिवर्तने, इस टॉपिक के ऊपर भाई जी क्लास कराएंगे। इतना दिन इतना देर तक तो मौन में रहा, मौन में रहे, अभी भी वही कंटिन्यू करना है। ओम शांति। आमेल इवत्तु सायंकाल 6 रिंद 7 ಕುಮಾರ್ಸಿಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಅಣ್ಣವರು ಕುಮಾರ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕುಮಾರಂ ಕೆ ಲಿಯೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೇ ಶಾಮ್ ಕೋ 6-7 ಬಜೆ ತಕ್. ಸಭಿ ಕುಮಾರ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಮೇ ಬೈಠೆ ರಹೇಂಗೆ, ಆಫೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ಕುಮಾರಣ್ಣಂದಿರು. ಭಾಯಿಜಿ 6-7 ಬಜೆ ತಕ್ ಕುಮಾರ್ಸ್ ಕೆ ಲಿಯೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಕರಾಯಂಗೆ. ಓಂ ಶಾಂತಿ.